अध्याय 17 ऋण, ऋणदाता, ऋणकर्ता एवं ब्याज के प्रकार। प्राचीन भारत में ऋणदाता एवं ऋणकर्ता की स्थिति। भूमिका। प्राचीन भारत में आर्थिक व्यवस्था में ऋण की महत्वपूर्ण भूमिका थी। व्यापार एवं वाणिज्य के विकास के साथ ऋण का महत्व एवं इसकी आवश्यकता संबंधित है। वैदिक साहित्य, धर्म शास्त्रों, स्मृतियों तथा अर्थशास्त्र में ऋण के उल्लेख मिलते हैं। जातकों से ज्ञात होता है कि बौद्ध युग में ऋण सामान्य थे। पाणिनि ने कुणिद का उल्लेख किया है। ऋण से संबंधित कुछ शब्दों का प्रयोग अष्टाध्यायी में मिला है, जैसे उत्तमर्ण ऋणदाता, अधमर्ण ऋणकर्ता तथा ऋण वृद्धि ब्याज आदि। प्रारंभ में मुद्रा के संदर्भ में ऋण का प्रचलन नहीं था, अपितु जातकों में साझीदार लाभ के रूप में ऋणों का प्रचलन था। जातकों से विदित होता है कि ऋण साझा एवं वस्तुओं पर ब्याज ऋणम आधार से व्यवसाय का प्रारंभ होता है। दीर्घ निकाय में चर्चा मिलता है कि गृहपति ऐसे दुकानदारों को ऋण देते थे जो दूरदर्शी और चलाक थे। सुख के अनुसार कोई व्यक्ति उस पुरुष को ऋण दे सकता है जो व्यापार करना चाहता हो, परंतु ब्याज के स्थान पर आधा लाभ प्राप्त करता रहेगा। शांति पर। महाभारत में भूता धन और पर शेयर बड़ा ऊंचा था। इसकी देर लाभ पर 6-7 कोष्टक में 85.7% तथा 15.7 कोष्टक में 93.75% के मध्य थी। A.N. बोस के अनुसार यह व्यवस्था पूंजीपति, मालिक तथा वेतन भोगी नौकर के मध्य लाभांश आधार पे हुए समझौते पर आधारित प्रतीत होती है। ऋण की स्थिति एवं प्रकार। प्राचीन भारत में धन ही नहीं अपितु वस्तुएं भी ऋण के रूप में दी जाती थी। जीवन की अन्य उपयोगी वस्तुएं जैसे कृषि संबंधी वस्तुएं ऋणदाता से ऋणकर्ता प्राप्त करता था। बृहस्पति तथा नारद स्मृति में सोना एवं अन्य बहुमूल्य धातुओं, सीसा, टिन, वस्त्रों, अनाजों, सब्जी, फलों, बीज, गन्ना, नमक, तेल, मादक द्रव्य, शक्कर, शहद, पशु, ऊन एवं दासियों को भी ऋण के रूप में दिया जाता था। ऋण के संबंध में प्राचीन भारतीय शास्त्रकारों ने विविध प्रकार की दरों तथा जमानत, जामनी प्रतीप की व्यवस्था स्थापित की है। जातकों से ज्ञात होता है कि धनाढ्य वर्गीय व्यापारियों में बिना जमानत के ऋणों का भी प्रचलन था, लेकिन कालांतर में जामीन या प्रतीम की लिखित जमानत पर ऋण व्यवस्था का उल्लेख जातक साहित्य तथा स्मृति साहित्य में हुआ है। बृहस्पति के अनुसार ऋणदाता को तब तक ऋण नहीं देना चाहिए जब तक समुचित मूल्य अथवा जमा राशि की जमानती न मिले अथवा चलती रही, अथवा ऋणकर्ता स्वयं लिखित बांड न प्रस्तुत करे। यह व्यवस्था परवर्ती उगो में भी चलती रही। इस प्रथा को बंध अथवा आधी कहा गया है। आधी के प्रकार। मनु के अनुसार आधी दो प्रकार की थी, नंबर 1 अचल, नंबर 2 चल। बृहस्पति के अनुसार ऋणदाता को भरपूर जमानत देकर अथवा साक्षियों के साक्ष्य सम्मत अनुबंध पर ऋण देना चाहिए। मौखिक साक्ष्य से अधिक महत्व इसी से वे रेहन को देते हैं जिसके साथ अनुबंध भी हो और साक्ष्य भी हो। नारद के अनुसार आधी एवं जमानत दानकर्ता में विश्वास उत्पन्न करते हैं कि उसका धन सुरक्षित रहेगा। साक्ष एवं गवाह ऋण प्रमाण के दो प्रमुख स्रोत हैं। विश्रम हेतु द्रावत्र प्रतिभूरेति रेवच लिखितम साक्षीणश्च देव प्रमाणे व्यक्ति कार के। बृहस्पति के अनुसार आधी 4 प्रकार की होती है, नंबर 1 चल संपत्ति, नंबर 2 अचल संपत्ति, नंबर 3 गोप्य, नंबर 3 भोग्य। नारद ने आधी के 2 रूप बताए हैं, संपत्ति का रेहन एवं निश्चित समय के लिए लिया गया हो, नंबर 2 ऋण की अदायगी समय तक संपत्ति का रेहन किया गया हो। इन दोनों को पुनः नारद ने गोप्य तथा भोग में विभाजित किया है। आधी का ज्ञान विभिन्न दृष्टिकोणियों से हुआ है, जैसे संपत्ति का स्वरूप, अनुबंध का रूप, समय का निर्धारण अथवा अनिर्धारित समय एवं प्रमाण के साक्ष्य। याज्ञवल्क ने इस संबंध में 3 प्रकार की व्यवस्थाएं निर्धारित की है, नंबर 1 ऋण अदायगी का समय निर्धारित हो, यदि रेहन की समयावधि समाप्त हो गई हो तो ऋणकर्ता का स्वामित्व समाप्त हो जाएगा, नंबर 2 यदि समय का निर्धारण नहीं हुआ हो तो ऋणकर्ता का रेहन रखी वस्तु पर स्वामित्व समाप्त नहीं हुआ हो और यदि आधी है तो भोग्य है, नंबर 3 यदि समय का निर्धारण नहीं है और अवधि गोप्य है तो ऋणकर्ता का स्वामित्व समाप्त हो जाता है, क्योंकि शर्तानुसार ब्याज की अदायगी न होने पर मूलधन 2 गुना हो जाता है। बृहस्पति के अनुसार यदि रेहन रखी वस्तु के समय निर्धारण की अवधि समाप्त हो गई हो अथवा मूलधन यदि दो गुना हो तो ऋणकर्ता को ऋण अदायगी के लिए 14 दिनों की छूट दी जाए ताकि ऋण अदा करने के बाद वस्तु या संपत्ति पर पुनः अधिकार कर सके। ऐसा ना होने पर ऋणदाता का रेहन रखी गई वस्तु पर अधिकार हो जाता है। हिरण्य दुगुड़ी भूते पूरे काले किताबधे बंधकस्य ध्वनि धनी स्वामी जिस सप्ताह प्रतीक्ष स्वयं तदंतराम धन दत्वा ऋणी बंधम वापनुयात। आदि के विषय में सामान्य नियम यह था कि भोग पर ब्याज नहीं लगता था, परंतु ब्याज के बदले लाभ लिया जाता था। यदि आदि के मूल्य में हास्य होता है, मूलधन तथा ब्याज मिलकर या अथेष्ट होता है अथवा ऋणकर्ता की समुचित सुरक्षा के बाद भी वह नष्ट हो जाती है तो ऋणकर्ता को दूसरी वस्तु का अनुबंधन करना पड़ता था या ऋणकर्ता को निर्धारित मूल्य वापस करना पड़ता था। ऋण पत्र की विशेषताएं। बौद्ध साहित्य में ऋण पत्रों का विवरण मिला है, इससे नीर पत्र कहा जाता है। ऋणकर्ताओं द्वारा ऋण पत्र व्यवहार में लाए जाने के संबंध में संदर्भ में जातकों में मिलते हैं। शास्त्रकारों के अनुसार ऋण पत्र की निम्न विशेषताएं थी। नंबर एक, ऋणकर्ता का नाम। नंबर दो, उनके पिता का नाम। नंबर तीन, उसकी जाति। नंबर चार, उसका गोत्र। नंबर पाँच, निवास। नंबर छह, व्यवसाय। नंबर सात, उपयुक्त विशेषताओं के साथ ऋणदाता का नाम। नंबर आठ, ऋण राशि। ऋण राशि। नंबर नौ, ब्याज की दर। नंबर दस, ऋण अदायगी की शर्तें। और नंबर ग्यारह, ऋण अदायगी का समय। शुक्र के अनुसार इस पर संभ्रांत गवाह की गवाही हो, ऋण पत्र लेखक के हस्ताक्षर हो कि उसने यह ऋण पत्र ऋणदाता और ऋणकर्ता दोनों की सहमति से ऋण पत्र लिखा है। यदि ऋण रेहन अथवा अनुबंध द्वारा दिया गया है तो इसका भी उल्लेख होना चाहिए। धर्म शास्त्रों के अनुसार ऋण पत्र के बिना कोई भी ऋण ना दिया जाए। कौटिल्य ने भी धर्म शास्त्रों का अनुमोदन करते हुए कहा है कि ऋण दान में ऋण पत्रों का प्रयोग अनिवार्य है। ऋण पर ब्याज की दरें। प्राचीन भारतीय साहित्य स्रोतों से प्राप्त होता है कि समान ऋणों पर ब्याज की दरों का पालन व्यवसायिक ऋणों में भी होता है। पाली ने दशैकदास का उल्लेख किया, अर्थात ऋणदाता 10 ऋण देने के पश्चात एकादश वापस पाता था, अतः ब्याज की दर 10% इंगित करती है। निम्न ब्याज की दर अर्ध या भाग पाली ने बताई है, अर्थात आधा कसापड़ प्रति माह ब्याज की दर थी। मनु बौधायन नारद एवं कौटिल्य के अनुसार सामान्य ब्याज की दर 1/4 प्रतिमाह अथवा 15% प्रति वार्षिक थी। यह दर चल संपत्ति अथवा अचल संपत्ति के रेहन पर भी थी। वशिष्ठ एवं गौतम के अनुसार 20 कर्षापण ऋण पर ऋणदाता पंचमांश प्रति माह ब्याज ले सकता था। बृहस्पति कौटिल्य एवं मनु ने भी इस दर का अनुमोदन किया है। परवर्ती युगीन याज्ञवल्क नारद एवं व्यास आदि ने भी यही दर बताई है। अंतर केवल इतना है कि उन्होंने 1/4 के स्थान पर मूलधन का 1/80 ब्याज दर कहा है। असुरक्षित बिना रेहन ऋण पर ब्याज की दरें उचित थी। इनका निर्धारण जाति आधार पर 2%, 3%, 4% या 5% प्रति माह किया गया है। कौटिल्य ने 60% प्रति वर्ष ब्याज की दर निर्धारित की है। मनु ने शूद्रों के लिए 60% प्रति वर्ष निर्धारित किया है, जबकि दुजो पर ज्येष्ठता अनुसार 25%, 36% तथा 48% प्रति वर्ष ब्याज दर बताई है। कौटिल्य के अनुसार सामान्य ऋणों की अपेक्षा व्यावसायिक ऋणों पर ब्याज दर अधिक होना चाहिए। बृहस्पति के अनुसार घास, लकड़ी, पत्तियों, ईंटों, तांगा, हड्डी, चमड़ा, शस्त्र, पुष्प एवं फलों के व्यवसायों पर ब्याज ना लिया जाए। अर्थशास्त्र तथा मनु के अनुसार लंबी अवधि से यज्ञ संलग्न व्यक्ति, बीमार शिक्षक के पास रुके हुए व्यक्ति, नाबालिकों एवं निर्धन व्यक्तियों को ब्याज लेना निषेध था। धर्म शास्त्रकारों ने ब्याज दर की सीमा भी निर्धारित की है। गौतम, मनु एवं कौटिल्य के अनुसार ब्याज मूलधन का दुगुना नहीं होना चाहिए। यदि ब्याज की अदायगी तुरंत की गई हो, मनु ने चक्रवृद्धि ब्याज पर लोक लगाई है। भार्गव के अनुसार ऋणकर्ता में कठिनाइयों में पड़कर आत्महत्या भी कर लेते थे। ऋण कभी कभी ऋणकर्ता के जीवन में चलता ही था, उसके उत्तराधिकारियों पर उसकी अदायगी का भार जाता था। अर्थशास्त्र एवं गौतम ने बताया है कि यदि ऋण असीमित समय के लिए दिया गया हो तो पुत्रों, पौत्रों या वैधानिक उत्तराधिकारियों या संयुक्त साझेदारी का उसकी यदि अदायगी करनी पड़ेगी मनु विष्णु नारद के अनुसार यदि ऋण संयुक्त परिवार के लाभ हेतु लिया गया है तो परिवार के सदस्यों द्वारा उसकी अदायगी की जाएगी भले ही रिक्त हरण हो गया हो। कौटिल का कथन है कि पशुपालकों शिकारियों नर्तकों एवं रजकों को अपनी पत्नी के साथ जीविका अर्जित करते हैं और छोड़कर अन्य परिवारों में पत्नी ऋणकर्ता की जिम्मेदारी उसके पति पर थी।